हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 5 श्लोक संख्या 43 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेम पुमर्थो श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नापरा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि में भागवत महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 5 जिसका शीर्षक है मैत्रेय से विदुर की वार्ता। और इन श्लोकों में मैत्रेय जी विदुर जी को देवताओं की प्रार्थनाओं के विषय में बता रहे हैं कि देवता जब उनको अलग अलग कार्य सौंपा गया तो अपने आप को असमर्थ मानते हुए भगवान के चरण कमलों की प्रशंसा करते हुए उनको अपना एकमात्र आधार बनाते हुए भगवान के स्तुति करते हैं, उसके विषय में यहाँ पर देवता कहते हैं कि भगवान आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान हैं, जो संसार के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। सारे मुनिगण उस आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों का को निकाल फेंकते हैं, अतएव हम आपके चरण कमलों को प्रणाम करते हैं। हे पिता, हे प्रभु, हे भगवान, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि वे तीन प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं, अतएव वे आपके उन चरण कमलों की छाया के शरण ग्रहण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण हैं, और इसलिए हम भी उन्हीं की शरण ग्रहण करते हैं। आगे कहते हैं, भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थ स्थलों के आश्रय हैं। निर्मल मन वाले महर्षि गण वेदों रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा में शरण लेकर पद पद पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप कर्मों के फलों से मनुष्य का उद्धार करते हैं। आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्तिपूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित और वैराग्य से के बल पर शांत हो जाता है। अतएव हमें आपके चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इसके उपरांत यहाँ तक देवताओं ने भगवान के चरण कमलों की असीम परिसीम महिमा के विषय में बताया। जीव का संपूर्ण दुख केवल भगवान के चरण कमलों की आश्रय को ग्रहण करने से ही समाप्त हो जाता है। संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति और भौतिक वस्तुओं के प्रति वैराग्य ये सब केवल भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से प्राप्त होता है। और आज कहते हैं विश्वस्य जन्मस तिथि संयमार्थे कृतावतारस्य पादाम भुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्य भयं स्वपुंसाम् विश्वस्य जन्मस्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पादां भुजन्ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्य भयं स्वपुंसाम् विश्वस्य जन्मस विश्वस्य अर्थात विराट ब्रह्मांड के जन्म यानी सृजन स्थिति अर्थात पालन संयमार्थे अर्थात प्रलय के लिए भी विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्भुजं ते कृत अर्थात धारण किया हुआ या स्वीकृत अवतारस्य अर्थात अवतार का पदम्भुज चरण कमल ते आपके व्रजेम सर्वे शरणं यदीश व्रजेम अर्थात शरण में जाते हैं सर्वे हम सभी शरणं आपकी शरण में जो यत जो ईश हे भगवान स्मृतिम प्रच्छयत्यभयम् स्वपुंसाम् स्मृतिम अर्थात स्मृति प्रच्छत्ति अर्थात प्रदान करके अभयम् साहस स्वपुंसाम् अर्थात भक्तों का अनुवाद हे भगवान हे प्रभु आप विराट जगत के सृजन पालन तथा संहार के लिए अवतरित होते हैं इसे हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं ये कितनी सुंदर प्रार्थनाएं हैं जो देवता भगवान के लिए कर रहे हैं यहाँ से हमें ये समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त देवताओं के आश्रय हैं समस्त देवता भी कोई कार्य नहीं कर पाते जब तक कि उनको भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त न हो इसीलिए वे कहते कि ये संसार का सृजन पालन तथा संहार ये आपका आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने वाले जो भक्त होते हैं जो ओ, ओ, वो उनके ही द्वारा किया जाता है क्योंकि ये चरण कमल आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करते हैं जितने भी भक्त हैं भगवान के जितने देवता हैं जो जो कार्य हैं उनको जो साहस प्राप्त होता है वो सब भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से प्राप्त होता है श्रील प्रभुपाद की जय श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं विराट जगत की सृष्टि पालन तथा प्रलय के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर यानी शिव तीन अवतार हैं ये भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के नियंत्रण अथवा स्वामी हैं जो दृश्य जगत के कारण हैं विष्णु
सत्वगुण के स्वामी हैं, ब्रह्मा रजोगुण के तथा महेश्वर तमोगुण के। प्रकृति के गुणों के अनुसार भक्तों के विभिन्न प्रकार हैं। सत्वगुणी लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, रजोगुणी लोग ब्रह्मा की पूजा करते हैं तथा तमोगुणी लोग शिव की पूजा करते हैं। ये तीनों देव भगवान कृष्ण के अवतार हैं। क्योंकि कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, देवतागण सीधे भगवान के चरण कमलों का निर्देश ग्रहण करते हैं। विभिन्न अवतारों का नहीं, किंतु भौतिक जगत में विष्णु अवतार की पूजा देवताओं द्वारा सीधे की जाती है। विभिन्न शास्त्रों में से पता चलता है कि देवतागण विष्णु के पास क्षीर सागर में जाते हैं और जब कभी विश्व के कामकाज के प्रशासन में कोई कठिनाई आती है तो वे अपनी समस्याओं के लिए निवेदन करते हैं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भगवान के अवतार हैं, किंतु वे विष्णु की पूजा करते हैं और इस प्रकार उनकी गणना भी देवताओं में होती है, भगवान के रूप में नहीं। विष्णु की पूजा करने वाले व्यक्ति देवता कहलाते हैं और जो ऐसा नहीं करते वे असुर कहलाते हैं। विष्णु सदैव देवताओं का पक्ष लेते हैं, किंतु ब्रह्मा तथा शिव कभी कभी असुरों का पक्ष भी ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें रुचि लेने से वे उनके समान बन जाते हैं, अपितु कभी कभी असुरों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए वे ऐसा कुछ करते हैं। अब यहाँ पर जैसे बताया, विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुज, कि भगवान जो है वो संसार का सृजन पालन और प्रलय करने के लिए कृतावतार अवतार लेते। तो भगवान के विभिन्न प्रकार के अवतार होते हैं। इनमें से कुछ अवतार जैसे मनवंतर अवतार होते हैं, युगा अवतार होते हैं, शक्ति आवेश अवतार होते हैं और गुणा अवतार होते हैं। तो गुण अवतार, जैसे प्रकृति में तीन गुण हैं तो भगवान को तीनों गुणों के लिए एक अवतार लेना पड़ता है। ब्रह्मा जी रजोगुण के, शिव जी तमोगुण के और साक्षात भगवान विष्णु जो कि भगवान का ही एक कला है, भगवान की एक प्रत्यक्ष कला है जो सत्वगुण का अवतार है। लेकिन इन सब के अंदर पावर भगवान श्री कृष्ण से है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि सबसे पहले केवल भगवान श्री कृष्ण थे और उसके बाद उनके समस्त देवी देवता और सारे जितने भी अवतार हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बात बताई गई है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कि जो देवता होते हैं वो सदैव अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, जब कोई प्रॉब्लम आती है या उनके कामकाज में कोई प्रशासन कोई कठिनाई आती है तो वो सीधा विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु जो कि भगवान का ही एक अंश है उनके पास जाते हैं, क्योंकि ये ड्यूटी भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु को ऊपर के किसी भी ब्रह्मांड में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको सॉल्व करनी है। सारे देवी देवताओं को एक एक ड्यूटी दे दी है और फिर अगर उनसे कोई कठिनाई होती है उस कार्य में तो वो विष्णु भगवान, ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो इन झमेलों में फंसते नहीं है, इस झंझट में उनको कोई, अभी ब्रह्मांड में कहीं पर कोई असुर आ जाएगा या फिर कोई विपत्ति खड़ी हो जाएगी या कुछ हो जाएगा तो देवताओं को खुद ही निपटना है। देवता नहीं निपट सकते तो ये देवता मिलकर कभी कभी है ना शिव ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कभी कभी शिव जी के पास जाते हैं। लेकिन जब जो स्थिति है बहुत ज़्यादा विकट हो जाती है तो सारे देवी देवता ब्रह्मा और शिव सब मिलकर विष्णु भगवान के पास जाते हैं। फिर विष्णु भगवान कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, वो अवतार लेते हैं। ब्रह्मा और शिव जी अवतार नहीं लेते, फिर विष्णु भगवान के, ये भी भगवान ने नियम बनाया है कि जो भी अवतार होगा वो विष्णु से ही अवतार लेगा, क्षीरोदक्षाएं विष्णु से ही निकले। लेकिन भगवान जो हैं वो ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार, जब सातवें मनवंत्र का 28वां चतुर्युग में द्वापर युग आता है तब साक्षात भगवान आते हैं। बाकी जितने भी होते हैं वो भगवान के अंश और कला, लेकिन उन सबको पावर कौन देता है? उन सबके अंदर पावर तब आता है जैसे लिखा हुआ है कि हे प्रभु, आप विराट जगत के सृजन पालन तथा संहार के लिए अवतरित होते हैं, इसलिए हम सभी आपके शरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये शरण कमल आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करते हैं। तो ये जो इन चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं उसी के कारण सारे देवी देवताओं के अंदर, सारे जो महान ऋषि हैं, जो भक्त हैं, उनको साहस और स्मृति प्राप्त होती है और उनको शक्ति प्राप्त होती है अपना कार्य करने के लिए। इसलिए देवता कहते हैं, इसलिए हम सब आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। आगे कहते हैं, यत सानुबंधे सती देह की मामाहमित्यूढदुरा ग्रहणा पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुण्या भजे मतते भगवन् पदाम्ब पदाम्जं यत्सानुबन्धे सती देहगे मामाहमित्यूढदुरा ग्रहाणां पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्या भजे मतते भगवन् पदाम्जं यत् सानुबन्धे सती के देहगे, यत् मनुष्यों के सानुबन्धे पाशा में बंधे, पाश में बंधे बंधने से असति इस तरह होकर देह गेहे, देह मना स्थूल शरीर, गेहे मतलब घर, मम मतलब मेरा, अहम मतलब मैं, इति इस प्रकार, ऊढ़ महान या गंभीर, दुराग्रहणा अवांछित उत्सुकता, पुंसाम यानी मनुष्यों की, सुदूर वसतोपि पुर्याम, सुदूर अर्थात काफी दूर, वसत रहते हैं अपि यद्यपि, पुर्याम शरीर में, भजे मतते भगवन् पदाम्जं, भजे मा पूजा करें तत् इसलिए ते तुम्हारे, भगवन् हे भगवान, पदाम्बुज अर्था पदाम्जं अर्थात चरण कमल। हे प्रभु, जो लोग नश्वर शरीर तथा बंधु बांधुओं के प्रति अवांछित उत्सुकता के द्वारा पाश बंद हैं और जो लोग मैं तथा मेरा के विचारों से बंधे हुए हैं, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते। बहुत ही सुंदर बात है यहाँ पर। देवतागण कहते हैं, यत्सानुबन्धेस्ति देहे सानुबन्धे सती देहगेहे मामाहमित्यूढदुराग्रहाम। वो जिनको केवल यही दिखता है कि ये मेरा है, ये मैं हूँ और ये वस्तुएं मेरी हैं, जब ये उत्सुकता होती है शरीर और अपने बंधु बांधुओं और शरीर से रिलेटेड वस्तु और व्यक्तियों के साथ, फिर उनको याद ही नहीं रहता कि जीवन का लक्ष्य कुछ और है। फिर वो भगवान के पुंसाम सुदूर अवसतोपि पुर्या, वो बहुत दूर हो जाते हैं भगवान के चरणों से। याद रखिए भक्तों, यदि हमें भगवान के निकट आना है तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हम ये शरीर नहीं हैं। क्योंकि जब तक ये देहात्म बुद्धि रहेगी कि मैं शरीर हूँ, फिर तो हमको शरीर से रिलेटेड वस्तु और व्यक्तियों की आसक्ति इतना पाश बंदे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो घर गृहस्थी बंधु बांधु और शरीर की जो आसक्ति है वो तो पाश की तरह है। यूँ समझो कि वो स अनुबंधे, हम इस पाश में बंधे हुए हैं, और अगर हम ऐसी तरह से इस बंधन में बंधे रहे फिर तो हम कभी भी मोक्ष प्राप्त होगा नहीं। इसलिए हमको अपने आप में ये बात समझनी है, इतना तो ज्ञान प्राप्त करना है कि हम ये शरीर नहीं है। फिर जैसे ही आपको और हमको ये होने लगेगा ज्ञान कि हम ये शरीर नहीं है, तो हमें पता चलेगा फिर हम कौन हैं, हम आत्मा हैं। अगर हम आत्मा हैं तो हमारा संबंध किसके साथ है, कौन हमारा है, कौन किसको प्राप्त करके आत्मा को आनंद मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो वस्तु प्राप्त करते हैं वो तो शरीर के लिए है, वो तो हमें आनंद दे नहीं पाती है ना। तो यहाँ बता रहे हैं पुंसाम सुदूर अवस्थतो विपुर्याम, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीर में स्थित होते हैं, लेकिन किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते करें। लेकिन देवता बोलते वो नहीं कर पाते, भले क्योंकि भगवान तो प्रत्येक जीव के हृदय में है। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय के अंदर निविष्ट हूँ, लेकिन वो हृदय इतना मलिन हो गया है, भौतिक आसक्ति ने इतनी गंदगी जमा कर ली है कि वहाँ हृदय में बैठे हुए भगवान के चरण कमलों के दर्शन जीव कर नहीं पाता। लेकिन देवता बोलते हैं भजे मतते भगवान पदम भज, के भले नहीं कर पाते लेकिन हम इतने भाग्यवान हैं कि हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जीवन का संपूर्ण वैदिक दर्शन यही है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के भौतिक बंधन से छुटकारा पाया जाए, जिसके कारण मनुष्य कष्टमय गर्हित जीवन बिताता रहा है। यह भौतिक शरीर जब तक चलता जाता है, जब तक मनुष्य भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की मिथ्या धारणा से विरत नहीं हो जाता है। भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की यह प्रेरणा मेरा तथा मैं का बोध है। मैं सारे विश्व का सर्वे सर्वा हूँ, मेरे पास बहुत सी वस्तुएं हैं और मैं अधिक वस्तुओं का स्वामी हूँ। संपत्ति तथा शिक्षा के मामले में मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है, मैं स्वामी हूँ और मैं ईश्वर हूँ, मेरे अतिरिक्त और है ही कौन। ये सारे विचार अहम मम दर्शन अर्थात में ही सब कोशों को प्रतिबंधित करते हैं। ऐसी जीवन धारणा के संचालित व्यक्ति भावबंधन से कभी मुक्ति नहीं पा सकते। किंतु यदि कोई केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए राजी हो जाए तो संसार के कष्टों से निरंतर तिरस्कृत व्यक्ति भी बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। इस कलयुग में कृष्ण कथा सुनने की प्रक्रिया अवांछित पारिवारिक स्नेह से छुटकारा पाने और इस तरह जीवन में स्थायी स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली साधन है। कलयुग में पाप पूर्ण कर्म फलों से ओतप्रोत है और लोग इस कलयुग के गुणों में अधिक लिप्त हैं, किंतु कृष्ण कथा के श्रवण से तथा कीर्तन मात्र से मनुष्य का भगवत धाम वापिस जाना सुनिश्चित है। अतएव मनुष्य को सभी तरह से एकमात्र कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे हमें सारे कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं भले संसार में बहुत सारे जीव और स्पेशली इस कलयुग में सारे जीव बहुत ही दुखी हैं, और दुख का कारण क्या है, संसार के इस जीवों के प्रति आसक्ति, शरीर और शरीर के बंधु बांधुओं के प्रति आसक्ति, भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति, और जिसके आसक्ति के कारण जीव जो है वो अपना प्रेम भगवान की ओर अपना आकर्षण डेवलप नहीं कर पाता है। तो उसका एक उपाय है, बहुत सरल उपाय श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसका बहुत ही सुंदर और सरल उपाय है कि कृष्ण कथा श्रवण किया जाए। जैसे जैसे जीव कृष्ण के विषय में श्रवण करेगा और श्रवण करते करते जीव के हृदय में भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी, फिर जीव को ये पता चलेगा कि भगवान का प्रेम जो है मुझे केवल वही आनंदित कर सकता है क्योंकि मैं आत्मा हूँ, तो इस भौतिक जगत की कोई वस्तु मुझे आनंदित नहीं। तो श्रवण और कीर्तन ये दो ऐसे हमारे पास साधन हैं जिसके द्वारा हम अपने सारे अपराधों को नष्ट करके अपनी सारी ये जो अनर्थ हैं उनको समाप्त करके भगवान के चरणों की ओर आकर्षण स्थापित कर सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी अंतिम लाइन में कहते हैं, अतिव मनुष्य को सभी तरह से एकमात्र कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि हम श्रील प्रभुपाद जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद जी ने अंतिम लाइन में ये गारंटी दी है कि ये जो कृष्ण कथा है यदि हम उसको सुनेंगे तो सारे कष्टों से छुटकारा मिल सकता है, हमारे जीवन के प्रत्येक कष्ट का समाधान यही है कि हम भगवान की कथाओं को श्रवण करें और भगवान के पवित्र नाम का जप करें। श्लोक नंबर 45, देवता कहते हैं, तान्मय सदृतिरक्षित भैर्ये परारितान्तर्मनसा परेश अतो न पश्यन्त्यरुगायनूनम् येते पदन्या सविलासलक्षा तान्वै ह्य सद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पराहृतान्तर्मनस परेश अथो न पश्यन्त्यरुगाय नूनम् ये ते पदन्यास विलासलक्ष शब्दात् तान्वय ह्य, तान्वय अर्थात भगवान की चरण कमल, वय निश्चित ही क्योंकि असत भौतिकतावादी वृत्ति भी बहिरंगा शक्ति से प्रभावित होने वालों के द्वारा अक्षी भी इंद्रियों द्वारा ये जो पराहृत्य दूरी पर खोए हुए अंत मनस आंतरिक मन को परेशा हे परम अथो इसलिए न कभी नहीं पश्यन्ति देख सकते हैं। जो भौतिकतावादी लोग होते हैं जो सदैव भौतिक वस्तुओं की खोज करते रहते हैं वो तो कभी भी आपके चरण कमलों के को नहीं देख सकते, न पश्यन्ति देख नहीं सकते। उरुगाय क्योंकि आप महान हैं, नूनम लेकिन ये ते पदन्यास विलासल ये जो ते तुम्हारे पदन्यास कार्यकलाप विलास दिव्य भोग लक्ष्य देखने वाले। अनुवाद, हे महान परमेश्वर वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतः दृष्टि बाह्य भौतिकतावादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी रहती है वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते किंतु आपके शुद्ध भक्त दर्शन कर पाते हैं क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके कार्यकलापों का दिव्य भाव से आस्वादन करना होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि भगवत गीता 18.61 में कहा गया है, भगवान हर एक के हृदय में स्थित हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। यह स्वाभाविक है कि मनुष्य कम से कम अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सके, किंतु जिन लोगों की अंतःदृष्टि बाह्य कार्यकलापों से आच्छादित हो चुकी होती है, उनके लिए यह संभव नहीं है। शुद्ध आत्मा जिसका लक्षण चेतना है, एक सामान्य व्यक्ति द्वारा भी आसानी से अनुभव की जा सकती है, क्योंकि चेतना सारे शरीर में फैली हुई है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में संस्तुति की गई है। योग पद्धति मानसिक कार्यकलापों को भीतर में ही केंद्रित करना है और इस तरह अपने अंदर भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना है। किंतु ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जिनको भगवान से कोई वास्ता ही नहीं रहता, अभी तो वे केवल चेतना से ही मतलब रखते हैं, जिसे वे अंतिम साक्षात्कार मान लेते हैं। चेतना का ऐसा साक्षात्कार भगवत गीता द्वारा चुटकी बजाते सिखाया जा सकता है, जबकि तथाकथित योगियों को भगवान के चरण कमलों पर अपने अपराध के कारण इसे पाने में वर्षों लग जाते हैं। सबसे बड़ा अपराध तो व्यष्टि आत्माओं से भगवान के पृथक अस्तित्व को नकारना है, या भगवान तथा व्यक्ति व्यष्टि आत्मा को एक तथा अभिन्न मानना। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीव अपने अपराधों के कारण हृदय में बैठे भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं, श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो योगी जन होते हैं, हालांकि हृदय में भगवान बैठे हुए, लेकिन उस भगवान से उनको कोई मतलब नहीं होता, वो कुछ सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वो भगवान के चरण कमलों की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। जब तक जीव का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तब तक उसे संसार की वस्तुएं तो प्राप्त हो सकती है, मगर भगवान की ओर आकर्षण प्राप्त नहीं होता है। इसलिए और सबसे बड़ा अपराध यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यष्टि आत्माओं से भगवान के पृथक अस्तित्व को नकारना है, कि आत्मा एक अलग अस्तित्व रखती है और भगवान का एक अलग अस्तित्व है। भगवान तो परमात्मा है और बाकी सब हम आत्मा हैं। और दूसरा अपराध यहाँ पर बताया गया कि भगवान तथा व्यष्टि आत्मा को एक तथा अभिन्न मानना, कि एक ही मानना, कि एक न एक दिन हम भगवान से निकले हैं और एक न एक दिन भगवान के अंदर मिल जाएंगे। तो निर्विशेषवादी प्रतिबिंब के सिद्धांत की गलत व्याख्या करते हैं और त्रुटिवश वे व्यष्टि चेतना को परम चेतना मान लेते हैं। वो सोचते हैं हम ही आत्मा हैं और हम ही परमात्मा हैं, अभी भगवान से दूर हैं, कल भगवान में मिल जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे। तो परम के प्रतिबिंबवाद को कोई भी निष्ठावान सामान्य जन बिना किसी कठिनाई के स्पष्ट समझ सकता है। जब जल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है तो जल के भीतर आकाश तथा तारे दोनों दिखते हैं, किंतु आकाश तथा तारों को समान स्तर पर नहीं माना जाता। तारे तो आकाश के अंश हैं, अतएव उन्हें पूर्ण के समान नहीं माना जा सकता। आकाश पूर्ण है और तारे अंश हैं, वे एक हो ही नहीं सकते। जो आध्यात्मवादी यानी योगी परम चेतना को व्यष्टि चेतना से पृथक नहीं मानते, वे इतने ही अपराधी हैं जितने के भगवान के अस्तित्व तक को ही नकारने वाले भौतिकतावादी हैं। अभी यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने एक अच्छा सा सुंदर सा मिसाल दिया कि ऊपर देखते हैं आकाश भी है और तारे भी हैं, लेकिन आकाश का अपना अस्तित्व है, तारों का अपना अस्तित्व है, जल में भले ही आकाश और तारे दोनों ही दिखते हों, लेकिन जो बेवकूफ ये सोचता है कि आकाश और तारे एक ही हैं, उनके अलग अलग अस्तित्व को नहीं समझता है, तो वो तो मूर्ख है। उसी तरह से जो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो आध्यात्मिकवादी या योगी परम चेतना को व्यष्टि चेतना से पृथक नहीं मानते, यानी भगवान और आत्मा को अलग अलग नहीं मानते, वे उतने अपराधी हैं जितने के भगवान के अस्तित्व तक को नकारने वाले। जो नहीं मानते भगवान को वो, और जो भगवान को एक ही मानते हैं कि चेतना आत्मा और परमात्मा एक ही है, तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते भौतिकतावादी जितने अपराधी हैं उतने ही अपराधी वो मायावादी हैं। वस्तुतः ऐसे अपराधी जन ना तो अपने अंतःकरण में भगवान के चरण कमलों को देख सकते हैं, ना ही वे भगवत भक्तों को देख सकते हैं। भगवत भक्त इतने दयालु होते हैं कि वे लोगों को ईश चेतना से अलौकित करने के लिए सभी स्थानों में घूमते रहते हैं, किंतु अपराधी जन भगवत भक्तों का स्वागत करने का अवसर खो बैठते हैं। यद्यपि अपराध रहित सामान्य जन भक्तों की उपस्थिति से तुरंत ही प्रभावित हो जाते हैं। इस संदर्भ में एक शिकारी तथा देवर्षि नारद की एक रोचक कहानी है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो, जो अपराधी होते हैं वो भगवान को देख ही नहीं पाते। भगवान को तो छोड़ो, जो भगवान के भक्त हर वक्त घूमते रहते हैं, क्यों? ताकि लोगों को ईश चेतना से अलौकित कर सकते, भगवान के विषय में लोगों को बता सके। लेकिन ये अपराधी लोग जो हैं वो भगवान के भक्तों को कभी भी स्वागत नहीं करते, कभी उनका सानिध्य उनकी संगति प्राप्त नहीं कर सकते। और यहाँ श्री प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर स्टोरी रोचक कहानी सुना रहे हैं। एक जंगल में एक शिकारी रहता था जो यद्यपि महान पापी था किंतु वह जानबूझकर अपराध नहीं किया करता था। वह नारद की उपस्थिति से तत्काल प्रभावित हुआ और अपना घर बार छोड़कर भक्ति मार्ग स्वीकार करने को राजी हो गया, किंतु नल कुबेर तथा मणिग्रीव अपराधियों को देवता के बीच में रहते हुए भी अगले जन्म में वृक्ष बनने का दंड भोगना पड़ा। यद्यपि एक भक्त की कृपा से बाद में भगवान ने उनका उद्धार कर दिया, अपराधियों को तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक उन्हें भक्तों की कृपा प्राप्त ना हो ले, तब वे अपने अंतःकरण में भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने के पात्र बन जाते। अब नल कुबेर और वणिग्रीव वो भगवान के दर्शन नित्य करते थे, वो तो भगवान 3 साल 2 महीने तक जब इंतजार कर रहे थे, सुबह शाम भगवान के दर्शन करते थे, भगवान की बाल लीलाओं का आस्वादन करते थे, लेकिन उनका उद्धार तो तब तक नहीं हुआ जब तक कि देवर्षि का श्राप जो है, क्या श्राप दिया था कि भगवान स्वयं अपने हाथों से आपका उद्धार करेंगे। तो भगवान ने फिर उनके उद्धार के लिए उन दोनों वृक्षों को गिराने के लिए दामोदर लीला की और अत्यंत ही सुंदर रीति से उन दोनों का उद्धार किया। लेकिन इसके पीछे जो वास्तविक कारण है वो क्या है? एक भक्त की कृपा, क्योंकि नारद मुनि ने उनके ऊपर कृपा करके उनको ये श्राप दिया था, तो इसीलिए वो कहते हैं कि नारद मुनि का श्राप रूपी वरदान फलीभूत हुआ है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही सुंदर बात बताई है, बहुत ही मार्मिक बात है कि अपराधियों को तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक उन्हें भक्त की कृपा प्राप्त ना हो जाए, तब वे अपने अंतःकरण में भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने के पात्र बन जाते, किंतु अपने अपराधों तथा अपनी नितांत भौतिकतावादिकता के कारण वे भगवत भक्तों तक का दर्शन नहीं कर पाते। बाह्य कार्यों में व्यस्त रहने से वे अपनी अंतर्दृष्टि का हनन कर डालते हैं। फिर भी भगवत भक्त उन मूर्खों के अपराधों पर ध्यान नहीं देते जो अनेक स्थूल या सूक्ष्म शारीरिक प्रयासों में लगे रहने के कारण होते हैं। भगवत भक्त ऐसे समस्त अपराधियों को बिना हिचक के भक्ति का आशीर्वाद देते हैं। भक्तों का यही स्वभाव है। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो तो सदैव कृपा करते रहते हैं। उनके संदर्भ में, उनके सानिध्य में जो भी आ जाता है वो उनको यही आशीर्वाद देते हैं कि आपको कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। भक्त तो आशीर्वाद दे देते हैं, अब हमको ये निर्णय करना है कि हम उस आशीर्वाद का लाभ भी उठाएंगे और भगवान के चरण कमलों की भक्ति करके अपने भौतिक जगत के जो आकर्षण हैं, भौतिक वस्तुओं में, बंधु बांधुओं में, भौतिक व्यक्तियों में, उस आकर्षण को समाप्त करके हम भी भगवान के चरण कमलों का ध्यान करके भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करेंगे जो कि छाते के समान है। जिस प्रकार छाता एक जीव को धूप और गर्मी से बचाता है, वर्षा के जब बहुत तेज बारिश होती है तो उस वर्षा के जल से उसकी सुरक्षा करता है, उसी तरह से ये संसार भी कष्टों से भरा हुआ है। पदम पदम यद विपदा सर्वत्र दुखम पश्येत। ये कष्टों से भरा हुआ संसार, यदि इस कष्टों से हम बचना चाहते हैं तो हमें भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और भगवान के भक्तों की संगति करनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा। मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं।